इस प्रेम वल्लभ गौशाला में हम राधाष्टमी के उत्सव पे सभी भक्त यहाँ आए थे। हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी की असीम कृपा से उनके जितने भी काउंसिलिंग ग्रुप चलते हैं सभी भक्त यहाँ पे आए थे। और गत वर्ष हमने यहाँ पे श्री राधाष्टमी महामहोत्सव मनाया था और उसी प्रकार आने वाली 11 तारीख को भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, गौर पूर्णिमा है, तो उसी गौर पूर्णिमा के मनाने के लिए हम सभी भक्त यहाँ पे आए हैं। तो आने वाले सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रवचन होगा, तत्पश्चात यहाँ पे कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद में यहाँ पे सभी भक्तों के लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्नान करने की व्यवस्था इस तरफ की गई है। तो कीर्तन के बाद सभी भक्त यहाँ से हम स्नान करने जाएंगे और स्नान के बाद में दोपहर का प्रसाद यहाँ पे होगा। जो सुबह आपने यहाँ पे महाप्रसाद लिया उन्हीं काउंटर पे दोपहर का प्रसाद भी दिया जाएगा। तो सभी भक्तों से विनंती है कि स्नान करके जब वापस आते हैं तो वहीं आपको अपना महाप्रसाद प्राप्त होगा। तत्पश्चात थोड़े विश्राम के बाद में हमारा दूसरा सत्र दोपहर का सत्र शुरू होगा। दोपहर के सत्र में यहाँ पे वरिष्ठ भक्त सभी आएंगे मंच पे और अपना साक्षात्कार बोलेंगे, भक्तिमय जीवन में आने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ है जीवन में। और सभी भक्तों से मेरी ये विनंती है कि जब वरिष्ठ भक्त यहाँ आते हैं और अपने मुखारविंद से जो भी वाणी प्रकट कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसे सुनने से ही हमारी भक्ति में बहुत वर्धन हो सकता है और हमें बहुत जानकारी प्राप्त हो सकती है भक्ति मार्ग में किस तरह से आगे बढ़ना है। तत्पश्चात हमारे बोरीवली ग्रुप के जयेश प्रभु द्वारा बहुत ही सुंदर एक नृत्य होगा और शाम को जिस प्रकार से हमारी प्रथा रही है कि हमारी यात्रा ड्रामा के बिना पूरी नहीं होती है, तो शाम को यहाँ पे दो बहुत ही सुंदर ड्रामा होंगे। एक विरार ग्रुप के द्वारा एक ड्रामा है और दूसरा ड्रामा हमारे बोरीवली ग्रुप के द्वारा है और हमारे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का आयोजन किया है। तो शाम को दूसरे सत्र में ये सब कार्यक्रम होंगे और तत्पश्चात यहाँ पे भगवान श्री श्री गौर निताय का बहुत ही सुंदर अभिषेक भी होगा। तो सभी भक्तों से विनंती है, मैं यही विनंती करना चाहूँगा कि आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उस कार्य पे हम विशेष रूप से ध्यान दें। आज हम अपना संसार परिवार सामाजिक बातें जो भी है वो सब पीछे छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो सभी भक्तों से मैं एक प्रण लेना चाहता हूँ, एक वचन लेना चाहता हूँ। क्या आप एक वचन देंगे मुझे? अगर वचन देंगे तो हरि बोल बोलिए जोर से। आज का हमारा जो वचन है जो आप सभी मुझे दे रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूं कि हम किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रजल्प नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की सामाजिक बातें नहीं करेंगे और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें उत्साह पूर्वक सहभागी होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे अभी प्रवचन होने वाला है लाल गोविंद प्रभु जी का, तो आप ये मत सोचिए कि ये प्रवचन जो है हम बाद में भी सुन लेंगे, अभी और कुछ कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये प्रवचन जो है ये बारंबार आपको सुनने नहीं मिलेगा। आज हम आए हैं जिस हेतु से आए हैं तो उस हेतु को पूरा करना ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी जो प्रवचन शुरू होगा तो सभी भक्तों से मेरी ये विनंती है कि कृपया बहुत ही शांति बनाए रखें और ध्यानपूर्वक इस प्रवचन का, इस कथा का आप पान कीजिए। प्रवचन के दौरान दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है सभी को। जो भी छोटे बच्चे हैं, जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं, उन सभी से मेरी नम्र विनंती है कि छोटे बच्चे के साथ में जो भी माताएं हैं और जो भी प्रभु जी हैं छोटे बच्चों को लेके, आप कृपया पीछे बैठ जाएं, आगे ना बैठें। सभी से विनंती है कि जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी शोर मचाने वाले हैं, उनको आगे ना बिठाएं। उन सभी को, छोटे बच्चों को अभी से आप पीछे बिठा दीजिए ताकि प्रवचन के समय कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और इन छोटे बच्चों के साथ में हम और एक बच्चे को भी लेके आए हैं। इन बच्चों के ऊपर तो हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है कि वो शांत कैसे रहे, और वो बच्चा है मोबाइल फोन। इस बच्चे को शांत कराना है प्रवचन के पहले और ये आज पूरा दिन शांत रहे, इसी में सबका भला है। तो सभी भक्तों से ये विनंती करता हूं कि अपने मोबाइल फोन जो है वे कृपया स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रख दे, अभी से कर लीजिए। मैंने कर लिया है और मैं अभी आप सबको बता रहा हूं कि अपने मोबाइल जो है इसको स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रख दीजिए। आज जो उत्सव हम यहाँ पे मनाने आए हैं, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, तो आज की जो कथा है वो भी इसी शीर्षक के ऊपर आधारित है। तो सुबह के सत्र में हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, अपने कानों से महाप्रभु का आविर्भाव श्रवण करेंगे, और शाम के समय में हम उन्हीं महाप्रभु का यहाँ पे अभिषेक करेंगे। अभिषेक भगवान का, जब भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का आविर्भाव होता है, तो भगवान का अभिषेक किया जाता है। और आप सभी जानते हैं, यहाँ पे उपस्थित सारे भक्त हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर से जुड़े हुए हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर से हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से हैं।
राधे मेरी स्वामिनी, मेरा धे जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तप
बाली न हो तो अधूरा लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सुंदर माइक है, सिस्टम है, हमारे समीर प्रभु मृदंग बजाने वाले हैं, बहुत सुंदर भजन है और कीर्तन है, परंतु यदि आपकी ताली न हो तो बहुत अधूरा लगता है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
यशोदा नंदन
गज जन रंजन, यशोदा नंदन गज जन रंजन,
यशोदा
Yeah।
ब्रिज की सब बाला रूप रजाला चिन्त्यताम्
चिन्त्यतां भक्त्या
चैतन्यचरितामृतम्
श्रूयतां नित्यम्
गीयतां मृदा चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्यचरितामृतम् श्रूयतां नित्यम्
गीयतां मृदा
चिन्त्यतां भक्त्या
चैतन्यचरितामृतम्
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णववांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द
हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमनायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोऽपि यत् प्रसादात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तते हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित इस एक दिवसीय यात्रा में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है हम सबका, परम करुणा वरुणालय पर ब्रह्म श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष में आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार है और महाप्रभु को अवतार कर कहना यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान ही है। प्राय कई लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। सभी युगों में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है तब तब परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान अवतार धारण करते हैं, परंतु इस कलयुग में और इस कलयुग के अगले द्वापर युग में भगवान अवतार नहीं लिए। इस युग में भगवान अवतार न लेकर साक्षात ही प्रकट हुए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान स्वयं आते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस युग में हैं इसी युग में साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं और चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, तो ऐसा क्यों? यदि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है तो वे भी श्याम होने चाहिए। और भी हमारे मन में प्रश्न होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों यहां पर अवतार लिए? तो चैतन्य महाप्रभु एक विशेष अवतार है और इस विशेष अवतार का कारण भी विशेष है। प्रायः भगवान जब कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे बहुत कारण होते हैं। इस संसार में भी देखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उस एक कार्य में कई कारण सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान बुद्धिम बुद्धि मताम मस्मी, बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए, उनके पीछे बहुत कारण है। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए, उसके पीछे बहुत प्रकार के कार्य हैं। उनमें से हमारे आचार्यों ने उन कारणों को दो भाग में विभाजन किया है, एक है अंतरंग कारण और एक है बहिरंग कारण। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जन्म लिए, उनके कुछ अंतरंग कारण भी हैं और उनके कुछ बहिरंग कारण भी हैं। अब आप लोग कहोगे अंतरंग कारण क्या होता है, बहिरंग कारण क्या होता है, इस बात को दृष्टांत के साथ समझ सकते हो। आप सब लोग दूर दूर से यहां पर आए हो, कुछ लोग भाईंदर से आए हैं, कुछ लोग विरार से आए हैं, कुछ लोग मीरार रोड से, तो कुछ लोग बोरीवली दहीसर से, और कुछ लोग तो उस कोने से चरनी रोड से आए हैं। तो आप सब लोग दूर दूर से यहां पर आए हो, उसमें भी कुछ लोगों का अंतरंग कारण होगा, कुछ बहिरंग कारण होगा। आप लोगों का यहां पर आना, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण यह है कि वहां जाएंगे तो कुछ मजा करेंगे, आनंद करेंगे। यह है आपका यहां पर आने का अंतरंग कारण कि वहां आनंद आएगा, कुछ मजा करेंगे। परंतु बहिरंग कारण क्या है? चलो भाई, प्रभु जी बुलाए हैं तो जाकर आ जाते हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा, फिर प्रवचन में आएंगे तो डांटेंगे, बहुत कम लोग आए। दो कारण से लोग आए हैं, एक तो स्व सुख वासना के कारण, स्वयं सुख भोगने के लिए आए हैं, और दूसरा कारण है कि चलो प्रभु जी को भी लगे कि हम लोग उसके पीछे आ रहे हैं या हम लोग उनके सामने बैठे हैं। तो जो आप अपने लिए आए हो स्व सुख वासना के कारण, सुखी होने के लिए आए हो, यह है अंतरंग कारण, जो अपना निजी उद्देश्य माना जाता है। और दूसरा कारण, आप यदि हमारे लिए आए हो तो यह है बहिरंग कारण। तो स्व सुख अपने के लिए जो कार्य होता है उसे अंतरंग कारण कहते हैं, और दूसरों के लिए जो कारण होता है उसे बहिरंग कारण कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से विलक्षण रूप धारण करके कलयुग में आए, उनके पीछे भी अंतरंग कारण और बहिरंग कारण है। चैतन्य महाप्रभु का यहां पर आना, उसमें अंतरंग कारण, उनके महान पार्षद स्वरूप दामोदर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि महाप्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए क्यों? कहते हैं, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वा नयेवा, स्वाद्यो येनाद भूत मधुरिमा की दृशो वा मदीय, सौख्यम चास्या भवतु भवत किम दशा वेति लोभा, तद भावाढ्य समजनी सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर क्यों आए? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ इच्छा थी, वह इच्छा अपूर्ण रह गई, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। बुद्धिमान लोग प्रश्न कर सकते हैं, क्या भगवान की इच्छा भी अधूरी रह सकती है? भगवान पूर्ण काम है, आप्त काम। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, भगवान के अंदर से जो निकलता है वह भी पूर्ण है, और भगवान के अंदर से जो पूर्ण निकल जाता है फिर भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। तो भगवान पूर्ण होते हुए भी उनकी इच्छा वासना अधूरी रह जाए, ये बात समझ में नहीं आती। श्रुति में भी कहा गया है कि आप्त कामस्य का स्पृहा, भगवान आप्त काम है, भगवान को कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर उनकी क्या वासना इच्छा अधूरी रह सकती है। तो प्रश्न होता है क्या भगवान की इच्छा भी अधूरी रह सकती है? हाँ, रह सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है, रसराज है, और सभी रसों के भोगता है। और जब तक किसी व्यक्ति में रस को भोगने की लालसा नहीं रहती है, तब तक उस रस में आनंद नहीं ले सकता है। इस बात को आप दृष्टांत के साथ समझ सकते हो। किसी को दूध पीने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर उसे कितना भी दूध पिलाया जाए आनंद नहीं आएगा। परंतु यदि किसी को दूध पीने की इच्छा है और उसे दिया जाए तो उसे बहुत सुख मिलेगा। भगवान रसिक शेखर है, रसराज है, रसो वही स। तो भगवान यदि रसिक शेखर है तो इसका अर्थ यह भी है कि भगवान में रस को भोगने की इच्छा भी है। कृष्ण में रस को भोगने की इच्छा भी है। अब भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आए तो इस प्रकट लीला में कुछ कुछ ऐसी इच्छा थी जो उनकी अधूरी रह गई। यद्यपि भगवान थे, कृष्ण है, परंतु फिर भी उनकी इच्छा अधूरी रह गई। कौन सी इच्छा अधूरी रह गई? स्वरूप दामोदर कहते हैं, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो। तीन इच्छा भगवान की अधूरी रह गई और उस तीन इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके आए। कृष्ण की कौन सी पहली इच्छा पूर्ण रह गई? तो कहते हैं श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की, प्रणय की महिमा कैसी है? श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के साथ प्रेम करने में कितना आनंद आता है, यह जानने की महिमा अधूरी रह गई। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पर आए, श्रीमती राधा रानी भगवान की ही शक्ति है और साथ ही साथ कृष्ण की प्रेयसी है, प्रेमिका है। यद्यपि कृष्ण परम सुखी है, देखिए हम बहुत ही गूढ़ विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण को जानना आसान है। एक बार कोई कृष्ण को जान सकता है, परंतु कृष्ण के इस अद्भुत रूप चैतन्य महाप्रभु को जानना बहुत मुश्किल है। और इस चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को हम उस धूल और धुएं के लोक में नहीं जान सकते हैं जहां पर हम रहते हैं। केवल रजस और तमस भरा हुआ है, ऐसी जगह पर हम भगवान के इस रूप को नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमारे भक्तों के द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है, इतना सुंदर स्थान है, और वह भी गाय माता के बाजू में आप सब लोग बैठे हो। इस प्रकार से प्रवचन सुनने का मौका लाखों करोड़ों में किसी को मिलता है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं सत्व संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, प्रमाद मोह तमसा भवतो अज्ञानम एवच। रजोगुण और तमोगुण में केवल क्रोध कर सकते हो, दूसरों को लूट सकते हो। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्व गुण में बैठना होगा, और सत्व गुण का मूर्तिमान स्वरूप है गाय माता। गाय के बाजू में यदि कोई बैठ जाता है, उनको देख लेता है, तो कितना भी क्रूर और पापी व्यक्ति के हृदय में भी करुणा उमड़ पड़ती है। तो बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर मौका है। बस अपने मन को खुला रखिए और आंख को खुला रखिए, और पांच पांच मिनट में यहाँ से अलार्म बज रहा है कि आप जगते रहिए जगते रहिए। देखो पांच पांच मिनट में बोल रही है तो ध्यान रहे नींद ना आ जाए। ये नींद बहुत बेकार वस्तु है। ये कुंभकर्ण की पत्नी है, जानते हैं? कुंभकर्ण कितना सोता था? 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के बाद भी उठता नहीं था, उसे उठाया जाता था। बड़ी बड़ी सीढ़ी लगाकर, कई सारे ढोल नगाड़े पखावज बजा बजा कर उसे उठाया जाता था। तो कुंभकर्ण की पत्नी है और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, पूरे विश्व का सम्राट क्यों न हो, ये कुंभकर्ण की पत्नी जिसके ऊपर सवार हो जाती है उसे सुला देती है। चक्रवर्ती सम्राट हो या पूरी दुनिया के साथ युद्ध करके घर पर आया हो, परंतु जैसे ही नींद आती है सो जाता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति को भी ये सुलाने वाली ये बहुत बड़ी शक्ति है। यस होता रहेगा बार बार, हमारा अनुभव है। हम यहां पर कितनी बार प्रवचन कर चुके हैं तो बार बार हुंकार मिलता रहेगा वहां से। तो ध्यान रहे यह निद्रा देवी कहीं हमें ग्रसित न कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण की अपूर्ण वासना के कारण उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। पहली अपूर्ण वासना कौन सी है? इस प्रकट लीला में ब्रज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। यद्यपि कृष्ण बहुत सुखी है, कृष्ण का अर्थ ही होता है कि जिससे नित्य निरंतर आनंद निकलता रहे। कृषि भू वाचक नच निवृत्ति वाचक तयेर एके परब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना और अण का अर्थ होता है आनंद। जिससे नित्य निरंतर आनंद उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। परंतु जिससे नित्य निरंतर आनंद उत्पन्न होता है ऐसे कृष्ण ब्रज वृंदावन में देखे कि मुझसे ज्यादा सुखी तो यह राधा है। श्रीमती राधा रानी मुझसे ज्यादा सुखी है। तो भगवान ने सोचा कि ये लोग मेरी भक्ति करते करते मुझे प्रेम करते घर को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, कुल की मान मर्यादा को तोड़ देते हैं, ऐसा मुझ में क्या है और ऐसा मुझसे कितना सुख मिल रहा है कि जिसके कारण ये सब लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से जो प्रेम करती है उस प्रेम में कितना आनंद है, कितना सुख है, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने देखा कि मुझसे भी ज्यादा सुखी तो ये लोग हैं। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है, ठंडी की ऋतु में, ठंडी की सीजन में हम लोग गर्मी लेने के लिए अग्नि तापते हैं। मान लीजिए एक मटके में लकड़े रखे जाए और उसको जलाए जाए और चार पांच लोग आजू बाजू में बैठते हैं, उसे ठंडी कम लगे और गर्मी प्राप्त हो। तो देखा गया है कि उस गर्मी को भोगने वाले वे व्यक्ति हैं जिसने वो आग लगाई और जिसमें आग लगाई वो मटका है। परंतु देखा जाता है कि जिसके लिए आग लगी है उसको कम गर्मी मिलती है परंतु मटके को ज्यादा गर्मी मिलती है। जो व्यक्ति अग्नि लगाता है उसे कम ताप मिलता है परंतु मटके को कोई छू भी नहीं सकता है, उसे इतना गर्मी लगती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति भगवान को समझ लिया जाए और मटका भक्त को समझ लिया जाए, यद्यपि भक्ति कृष्ण के लिए हो रही है, यद्यपि भक्त कृष्ण के लिए भक्ति करते हैं, परंतु कृष्ण से ज्यादा आनंद भक्त को मिलता है। इसलिए भगवान ने देखा कि ये लोग कितना आनंद ले रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा आनंदित हो रहे हैं, इसलिए मुझे भी ये लोग की तरह भक्त बनना होगा। क्योंकि भक्त बने बिना यह आनंद को कोई ले नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं भक्त बनूंगा और भक्त बनकर मैं मेरी ही भक्ति करूंगा और ये राधा इत्यादि जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के समान सुखी और आनंदित होऊंगा। तो भक्त बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव चुराए और श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का पहला कारण कि भक्त भगवान की भक्ति करके कितना सुख प्राप्त करते हैं यह भगवान को देखना था, ये पहला कारण। दूसरा कारण अनिया एव स्वाद्यो येनाद भूत मधुरिमा की दृश्यो। दूसरा कारण यह था कि भगवान ने प्रकट लीला में कृष्ण ने देखा कि यह लोग मुझे देखकर इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं कि अपने घर के सभी काम काज भूल जाते हैं। तो भगवान ने देखा कि मुझमें न जाने ऐसी कितनी सुंदरता है, न जाने मैं ऐसा कितना सुंदर हूं जिसे ये लोग आनंद उठा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि यद्यपि मैं सुंदर हूं परंतु मेरी सुंदरता का लाभ मैं स्वयं नहीं ले सकता हूं। मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो अपनी सुंदरता का लाभ वह स्वयं नहीं उठा सकता है, दूसरे लोग अवश्य उठाते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री यदि सुंदर है तो वे स्वयं सुंदर हो गई तो स्वयं को उसका सुख नहीं मिलता है, परंतु उस सुंदर स्त्री को देखने वाला यद्यपि सुखी होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान प्रकट लीला में सर्वाति सुंदर थे परंतु अपनी सुंदरता का लाभ वे स्वयं नहीं ले सके, इसलिए अपनी सुंदरता को निहारने के लिए कृष्ण भक्त के रूप में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण बताते हैं मदीय सौख्यम चास्या भवनु भवत की दृश्यम। कहते हैं कि मेरे भक्त और भक्तों में शिरमोर श्रीमती राधा रानी को मेरी भक्ति करने से कैसा आनंद मिलता है, पहले कितना आनंद मिलता है वह देखने के लिए, और अब तीसरा कारण यह है कि कैसा आनंद मिलता है, आनंद का भी रूप होता है। जैसे किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन रसगुल्ला खीर इत्यादि दिया जाए और कहा जाए कि आपको कैसा लग रहा है, कहेंगे बहुत अच्छा लगता है। कहा जाए कैसा है तो कहेंगे मीठा है, इससे ज्यादा नहीं कह पाएंगे। यद्यपि तीनों मीठा है परंतु तीनों के मिठास में कुछ अंतर है। और कोई व्यक्ति कितनी भी मिठाई खा रहा है परंतु मिठाई खाकर उसे कैसा सुख मिल रहा है वह सामने वाले को बता नहीं सकता है। कोई मिठाई खा रहा है और कोई व्यक्ति उसे जाकर कहे कि आपको कैसा सुख मिल रहा है, तो जब तक वह व्यक्ति मिठाई स्वयं नहीं खाएगा तब तक वह जान नहीं पाएगा कि मिठाई खाने से कितना आनंद मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट लीला में सोचा कि मेरे भक्त लोग मेरी भक्ति करते हैं परंतु इस भक्ति में कैसा आनंद मिलता है यह देखने के लिए भगवान भक्त के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए, उनके तीन कारण गिनाए गए कि कितना सुख मिलता है भक्त को, कैसा सुख मिलता है भक्त को और मेरी सुंदरता कैसी है, यह तीन चीज जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित हुए। और इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए उसके बहिरंग कारण भी है और उसमें मुख्य कारण यह है कि अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। भगवान श्री कृष्ण युग युग में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और युग युग में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, परंतु भगवान ने अपने धाम में जाकर देखा कि मैं सतयुग में अवतार लिया था और अवतार देकर उपदेश दिया परंतु फिर भी लोग नहीं सुधरे। तब मैं राम अवतार लेकर त्रेता युग में आया परंतु फिर भी कोई नहीं सुधरे। तब जाकर द्वापर युग में स्वयं प्रकट हुआ और अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व भर को भगवत गीता का ज्ञान दिया। इतनी सुंदर भगवत गीता का ज्ञान कि यदि कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में धारण कर ले तो वह सुखमय होकर इस संसार में रह सकता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान भगवत गीता का उपदेश देकर चले गए और अपने धाम में जाकर देखे तो भगवत गीता को पढ़ने की और जीवन में उतारने की तो बात दूर रही, इस संसार के कुछ लोग तो भगवत गीता को ही नहीं जानते थे। और यदि किसी के पास भगवत गीता है भी तो लोग उसे पढ़ते नहीं थे, और यदि कुछ लोग पढ़ते भी थे तो समझ में नहीं आता था। भगवान द्वापर युग की लीला स्मरण करके चले गए और फिर सोच रहे थे कि अब जीव का उद्धार करने के लिए क्या किया जाए। तब भगवान ने सोचा कि जब तक मैं स्वयं भक्ति करके नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं स्वयं आचरण करके नहीं सिखाऊंगा, तब तक इस संसार के लोग समझने वाले नहीं हैं। दृष्टांत दिया जाता है जैसे नर्सरी में या जूनियर या सीनियर केजी में किसी बालक को पढ़ाया जाए कि ए फॉर एप्पल, बोर्ड में लिखा जाए कि आप अपनी अपनी स्लेट में ए लिखो, तो बालक मूड की तरह बैठे रहते हैं, कुछ लिखते नहीं है। दूसरी बार टीचर कहती है कि ए फॉर एप्पल, आप अपनी स्लेट में ए लिखो, फिर भी ये कुछ नहीं लिखते हैं। तीन चार बार जब इस प्रकार से कहती हैं और ये बालक लोग लिखते नहीं हैं, तब टीचर क्या करती हैं, वे स्वयं उस बालक का हाथ पकड़कर उनकी स्लेट में ए लिखाती है। तो भगवान ने सोचा कि उपदेश तो बहुत किया, सतयुग त्रेता और द्वापर में बहुत बहुत उपदेश किया, लेकिन लोग समझे नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब मैं भक्त बनकर अवतार लूंगा, अब मैं भक्त बनकर इस पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं स्वयं मेरी ही भक्ति करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कृष्ण की भक्ति की जाती है। भगवान अपने धाम में बैठकर सोच रहे हैं। देखिए भगवान की इस जीव पर कितनी करुणा है। भगवान इस जीव का उद्धार करने के लिए एक से एक अवतार धारण करते हैं। यहां तक भगवान सोचने लगे कि जब तक भक्त बनकर नहीं जाऊंगा तब तक ये लोग समझेंगे नहीं। इसलिए भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सोचे कि भक्त बनकर जाना है और संसार में भक्ति करूंगा और लोगों को सिखाऊंगा कि इस प्रकार से भक्ति की जाती है। तो भगवान अपने धाम में बैठे थे और सोचने लगे कि भक्त बनना है, परंतु मैं तो भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भक्त कैसे बन सकता हूं, क्योंकि भक्त बनने के लिए भक्त का भाव चाहिए, मूड चाहिए। तब सोचने लगे कि इस संसार में जो सबसे बड़ा भक्त है उस सबसे बड़ा भक्त का भाव ग्रहण कर लूंगा, इसलिए मैं भक्त बन जाऊंगा। तब भगवान ढूंढने लगे कि इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है, और ढूंढते ढूंढते अंतिम निर्णय निकला कि श्रीमती राधा रानी से बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को ले लिए। अब देखिए, हमारा जैसा भाव होता है वैसा शरीर का रंग होता है। आपका अनुभव होगा, यदि कोई घर पे बैठकर आराम से सो रहा है तो उसका मुख प्रफुल्लित है और उनका मुख श्वेत होगा, सफेद रंग का होगा, परंतु जैसे ही रास्ते से चला और ट्रेन में बैठा और किसी ने धक्का मुक्की करके थप्पड़ मार दिया तो वही मुंह कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्यों, पहले सफेद था अब लाल क्यों हो गया, भाव बदल गया। पहले शांत भाव था अब रौद्र भाव, क्रोध क्रोधित का भाव आ गया, क्रोधित हो गया। तो जैसा जैसा हमारा भाव होता है वैसा वैसा शरीर का रंग होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी गौर वर्ण की है। क्यों, क्योंकि राधा रानी भगवान की उन्नत उज्जवल भक्ति करती हैं। तो जब श्याम वर्ण के कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण कर लिया तो श्याम वर्ण के कृष्ण गौर हो गए, सफेद हो गए, और कैसे सफेद कहते हैं राधा रानी तपाए हुए सोने के समान है, तो भगवान श्री कृष्ण की भी तपाए हुए सोने के समान, गौर अंग गौर अंक के समान, तपाए हुए सोने के समान पीले और तेजस्वी हो गए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आने के अवतार लेने के बहुत बहुत कारण है, और उस कारण में अंतिम कारण में आपको कहने जा रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 524 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अब भगवान के लिए जन्म नहीं कहा जाएगा, जन्म हमारा होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। हाड़ मास से बने हुए पंच महाभूत के बने हुए देह का जन्म होता है, परब्रह्म भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। तो आज से 524 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए, इसका बहुत बड़ा कारण एक महान आचार्य महान भक्त जिन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, और उस ग्रंथ का नाम है चैतन्य भागवत। चैतन्य महाप्रभु की लीला के तीन ग्रंथ है, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। चैतन्य मंगल ग्रंथ के रचयिता लोचनदास ठाकुर है, चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, और चैतन्य भागवत के रचयिता वृंदावन दास ठाकुर है। ये वृंदावन दास ठाकुर और कोई नहीं, श्री वेद व्यास जी के ही अवतार हैं। वेद व्यास जी ही कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए, और वेद व्यास जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए कृष्ण की कथा रूपी श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा, वैसे ही उसी वेद व्यास जी ने इस कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला दी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर कैसी स्थिति में, इस संसार की स्थिति कैसी थी, कहते हैं 523 वर्ष पूर्व संसार किस स्थिति में था और कौन सी पोजीशन में था, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, और उस स्थिति को देखकर भगवान से नहीं रहा गया। तो आइए चैतन्य भागवत ग्रंथ से हम वृंदावन दास ठाकुर के ही शब्द से आपको यह श्रवण कराएंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ या आविर्भाव हुआ। कथा प्रारंभ करते हैं वृंदावन दास ठाकुर सबसे पहले प्रणाम करके, कहते हैं जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, गौर सुंदर की जय हो, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय हो, महामहेश्वर चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय जयकार करते हैं। जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। श्री गदाधर दास गदाधर के जो जीवन है प्राण के समान है, और अद्वैत आचार्य जिनकी शरण ग्रहण करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति लव्य है। हमें भी प्रश्न होता है कि हम यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कथा क्यों सुन रहे हैं, इसका उत्तर देते हुए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि सुनी ल चैतन्य कथा, यदि कोई चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी ल सुनता है तो क्या होता है, भक्ति लव्य है, उसे भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों इस संसार में सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वह है भक्ति का धन, और जितना भी धन है वह धन इस शरीर जब छूटता है तो उसके साथ चला जाता है। आप करोड़पति हो या अरबपति हो, जैसे ही यह शरीर छूट गया तो करोड़ और अरब रुपये आपके साथ नहीं आएंगे। फिर कितना भी धनी क्यों न हो, यदि अच्छे कार्य नहीं किया है तो कुत्ता और गधा बनना पड़ेगा, और वहां पर आप नहीं कह सकते अरे मैं तो करोड़पति था, नहीं कह सकते। एक कथा याद आ रही है, एक सेठ ऐसे ही थे, बहुत धनी थे और उनके चार चार पुत्र थे, परंतु कई भक्तों ने उनको कहा कि आप भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण कथा सुनो, परंतु किसी की बात को नहीं माना और कहते थे कि मैं कल करूंगा, बाद में फिर करूंगा, बाद में करूंगा। और ऐसे करते करते उसकी मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई। वे थे करोड़पति, अरबपति, धन बहुत था, धन बहुत था, इसलिए मृत्यु के बाद उसका दूसरा जन्म चींटी के रूप में हुआ। और चींटी के रूप में हुआ ऐसा कि वह सेठ बहुत रुपये कमाए, बहुत रुपये कमाए, परंतु कमाते कमाते जब उसको भोगतने का समय आया तो उसको डायबिटीज हो गई। इसलिए बेचारे स्वीट नहीं खा सकते थे, मीठा नहीं खा सकते थे, परंतु उसकी इच्छा रोज बनी रहती थी कि यदि ये डायबिटीज न होती तो मैं रोज गुलाब जामुन खाता, रसगुल्ला खाता, धन की कोई कमी नहीं है। यह सोचते सोचते उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए दूसरा जन्म चींटी का हुआ। और उसी के बच्चे के उनके लड़कों के घर में एक शक्कर के डिब्बे में वह चींटी बना। क्या करे, उनके बालक थोड़ी ना जानते हैं कि ये हमारे पिताजी हैं। उनकी बहू ने दूसरे दिन डिब्बा खोला और चाय का उकाला गर्म हो रहा था और उसमें चम्मच भर के वह चीनी लिया, साथ में उनके पिताजी ससुर जी थे और उस ससुर जी को उस उकाले में डाल दिया। हरी बोल हो गया, हरी बोल। बेचारा सेठ बार के भाव में चला गया। यद्यपि करोड़पति अरबपति, परंतु धन कुछ काम में नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार, परंतु यदि कोई भजन करता है, भक्ति करता है, तो भक्ति अव्ययी धर्म है, भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। आज यदि आप भक्ति करते हो तो यह भक्ति मरने के बाद जन्म जन्मांतर तक साथ में रहती है। इसलिए सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो यह भक्ति रूपी धन। एक बार एक व्यक्ति ने धन कमाने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए शिव जी को प्रसन्न किया, और सब लोग जानते हैं कि शिव जी थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं तो शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक नाम ही है भोलेनाथ, बेचारे भोले हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करके कहा कि हे शिव जी, मुझे इस दुनिया का सर्वोच्च धन चाहिए, करोड़पति बनना है, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसा एक पारस मणि मुझे दे दो, स्पर्श मणि, कि जिस लोहे के साथ में स्पर्श करूं तो वह सोना बन जाए, भंगार खरीद लूंगा और लोहे के साथ उस स्पर्श मणि को घिस घिस कर सोना बनाकर बेच दूंगा। अब शिव जी को प्रसन्न कहा और शिव जी ने कहा तथास्तु, आप एक काम करो, आप अभी देहरादून पकड़ो, मथुरा उतर जाओ और मथुरा में यमुना के किनारे एक साधु महात्मा रहते हैं जिसका नाम है सनातन गोस्वामी। वो यमुना नदी के किनारे पर एक कुटिया में रहते हैं, उनके पास स्पर्श मणि है, उनको जाकर कहना कि शिव जी ने कहा है स्पर्श मणि दो, तो वो दे देंगे। ये तो बहुत उत्साह से गया और उत्साह से वृंदावन पहुंचा, साइकिल में बैठा, यमुना के किनारे गया, ढूंढा उस साधु को, साधु की कुटिया दिखाई दी और साधु की कुटिया को देखकर ये सोचने लगा कि यदि इसके पास स्पर्श मणि होता तो ये खुद बंगला नहीं बना लेता, लगता है शिव जी झूठ बोले हैं मुझसे। लेकिन फिर विचार आ रहा था कि शिव जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसे मन ही मन विचार कर रहा था तो तुरंत वो कुटिया आ गई, साइकिल से उतर गया और उस कुटिया में गए तो सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो इस व्यक्ति ने प्रणाम करके कहा कि साधु महाराज, पहले ही कह दिया मुझे शिव जी ने भेजा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो क्या चाहिए। शिव जी ने कहा है कि आपके पास स्पर्श मणि है, तो क्या यह सत्य बात है? यदि आपके पास स्पर्श मणि है तो मुझे दे दो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ, वो कचरा कूड़ा, वो कचरे का डिब्बा पड़ा है, तो वहां कहीं पड़ा होगा, ढूंढ लो उसे। ये गया और कचरे के डिब्बे को खोला और खोलकर देखा कि बिल्कुल नीचे वह स्पर्श मणि पड़ा था। और स्पर्श मणि को लेकर ये तो आनंदित हो गया, सुखी हो गया और नाचते हुए वहां से निकला अपने घर आने के लिए। परंतु वह बुद्धिमान था, रास्ते में आते आते उसने सोचा कि इस साधु ने स्पर्श मणि को कचरे में फेंक दिया, इसका अर्थ यह है कि इस साधु के पास इस स्पर्श मणि से भी बड़ा कोई धन है। पता है, बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी वस्तु कचरे में डाल देते हैं, इसका अर्थ है कि वह बड़ा है, उसके पास इससे भी कोई बड़ी वस्तु है। तो उसने सोचा कि नक्की उस व्यक्ति के पास, उस साधु के पास स्पर्श मणि से भी कोई बड़ा धन है। सोचा चलो उससे ही प्राप्त करते हैं। रिटर्न, साइकिल को रिटर्न घुमाया और वापस आकर सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया और कहा कि आपने स्पर्श मणि को कचरे में फेंक दिया, इसका अर्थ मैं समझ रहा हूं कि इससे भी कोई बड़ी वस्तु, बड़ा धन आपके पास होगा। सनातन गोस्वामी ने कहा अवश्य मेरे पास इससे भी बड़ा धन है। तो उसने कहा अब मुझे स्पर्श मणि नहीं चाहिए, अब मुझे इससे भी बड़ा धन है वह चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो, सोच समझ कर बात करो, यदि इससे भी बड़ा धन चाहिए तो सबसे पहले स्पर्श मणि को यमुना में फेंकना होगा। सनातन गोस्वामी के सामने देखते देखते स्पर्श मणि यमुना में फेंक दिया और कहा कि चलो अब मुझे सबसे बड़ा धन दो। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, मेरे पास जो धन है यह धन इस पृथ्वी का धन नहीं है, इस पृथ्वी के ऊपर जन लोग, मर लोग और तप लोग का भी धन नहीं है, स्वर्ग लोग का भी धन नहीं है, ब्रह्म लोग का भी नहीं। मेरे पास जो धन है वह तो गोलोक का धन है, और गोलोक में भी जो सर्वोच्च धन है, गोलोक एरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा गोलोक एरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो धन है हरि नाम, भगवान का नाम, यह धन मेरे पास है, चलो मेरे साथ बोलने लगो हरे कृष्णा तो इस प्रकार से उस व्यक्ति ने गोलोक के धन को प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य किया। भाव यह है कि संसार में जो धन है एक क्षणिक धन है, और किसी व्यक्ति को कितना भी धन मिल जाए वह सुखी नहीं हो सकता है। जो हजारपति है वह करोड़पति का सपना देखता है, करोड़पति लखपति का सपना देखता है, और लाखपति अरबपति का, करोड़पति अरबपति का सपना देखता है। सबके पास धन है, परंतु धन सुख का कारण नहीं है, उल्टा दुख का कारण है। सुख का कारण एकमात्र भक्ति है, भक्ति करके ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनकर भक्ति प्राप्त हो सकती है। पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, स्फुरुक जिह्वाय गौर चंद्र अवतार। यह ग्रंथ लिखने वाले वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य भागवत लिखने वाले, सभी भक्त और भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और सभी भक्त और भगवान को प्रणाम करके अपनी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वास्तव में प्रणाम सबको करना चाहिए, प्रणाम करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, और इस संसार की सबसे बड़ी भक्ता गोपियां बहुत सुंदर कहती हैं कि प्रणत देही नाम पाप कर्षणम। हे कृष्ण, यदि कोई आपके चरण को प्रणाम कर लेता है तो उनका सारा पाप जलकर भस्म हो जाता है। तो यहां पर बार बार वृंदावन दास ठाकुर प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार की कथा कह सकूं। जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, जय जय सेवा विग्रह नित्यानंद। मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ और चैतन्य महाप्रभु के नित्य लीला के भाई नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ। अविज्ञात दुई भाई आरजत भक्त तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को समझना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान की कृपा हो तो आसानी से उसे समझा जा सकता है। ब्रह्मादिर स्फूर्ति हय कृष्णेर कृपाए सर्व शास्त्र वेदे भगवते एई गाए। भगवान की कृपा से ही हम भगवान को और शास्त्र को समझ सकते हैं, ये सभी शास्त्रों में कहा गया है। और साक्षात ब्रह्मा जी को भी भगवान की कृपा से ही ज्ञान मिला है। भागवत में वो प्रसिद्ध श्लोक है, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिम स्मृतिम हृदि। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान प्रदान किया, तब जाकर ब्रह्मा ब्रह्मा बने। नहीं तो बेचारे यह भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। बहुत घूमे उस कमल की डंडी में, परंतु कुछ पता नहीं चला। पूर्वे ब्रह्मा जन्म लेन नाभि पद में है ते, तथा पिय शक्ति नाही किछुक देखी थे। तबे जबे सर्व भावे लईला शरण, तबे प्रभु कृपाय दिलेन दर्शन। ब्रह्मा जी ने जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान के लिए तपस्या की, तब जाकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बंसरी बजाई, सारा वेद वेदांत और शास्त्र का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो गया। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर भी थोड़ा भी ज्ञान प्रकट नहीं होता है। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान है। ज्ञान हमारी इंद्रियों की मेहनत से नहीं मिलता है, ज्ञान भक्ति से मिलता है। सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान कहते हैं कि यदि कोई नित्य निरंतर मेरी भक्ति करता है तो ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि मैं देता हूं, ज्ञान मैं प्रदान करता हूं। तबे कृष्ण कृपाय स्फुरिला सरस्वती, तबे से जानिला सर्व तत्व तार शक्ति। है न कृष्ण चंद्र दुर्गेय अवतार, तान कृपा बिने कार शक्ति जानिवार। भगवान श्री कृष्ण का यह जो अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का ये जो स्वरूप है, उसे जानना बहुत मुश्किल है। अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला। अचिंत्य हमारे चिंता, हमारे मन से भी परे हैं भगवान की लीला। भगवान की कुछ कुछ लीला ऐसी हैं जो हमारे मन में भी नहीं बैठ सकती, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए अचिंत्य कहा गया है। और अगम्य हम कभी देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं। कौन है तू कृष्ण चंद्र करे अवतार, कार शक्ति आछे तत्व जानी ते ताहार। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों अवतरित होते हैं और भगवान में कितनी शक्ति है, ये कोई नहीं जान सकता है। तथापि फिर भी भागवत और गीता में कहा गया है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। कहते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, धर्म पराभव हय जखने जखने, अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दीने दीने। जब दिन भर दिन अधर्म बढ़ता है, पाखंड बढ़ता है, तब साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे, ब्रह्मा आदि प्रभुर पाय करेन विज्ञापने। जब दिन भर दिन अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और कलयुग में, कलियुगे धर्म हय हरि संकीर्तन। कलयुग का धर्म हरि संकीर्तन है। कलयुग का सबसे मुख्य धर्म है भगवान का नाम लेना। कलयुग में यदि कोई तपस्या करेगा तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएगा। कलयुग में यदि कोई ध्यान करेगा तभी वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान का नाम लेना होगा। कलियुगे धर्म है हरि संकीर्तन, एतद अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। तो कलयुग में सर्वोच्च धर्म मुख्य धर्म है भगवान का नाम लेना। तो भगवान का नाम किस प्रकार से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, यह समझाने के लिए, यह दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। और सर्व शास्त्र प्रमाण है, सभी शास्त्रों में और शास्त्रों में भी जो सभी शास्त्रों का फल है, वैसे भागवत में भी कहा गया है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। भागवत ग्रंथ में भी यह निरूपण किया गया है कि कलयुग में कैसे भगवान अवतार लेंगे, तो कहते हैं कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम का अर्थ होता है कलयुग में ऐसे भगवान अवतार लेंगे जो कृष्ण का वर्णन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे। और त्विषा अकृष्णम, और उनका रंग कैसा होगा, कृष्ण का अर्थ होता है काला और अकृष्ण का अर्थ होता है गोरा। तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, उनका रंग गोरा होगा। और उनके पास शस्त्र कौन से होंगे, जैसे भगवान राम धनुष बाण रखते हैं, परशुराम फरसु रखते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु कलयुग में जो अवतार होगा वे सांगो पांगास्त्र पार्षदम, उनके अंग उपअंग ही उनके अस्त्र होंगे। यज्ञ संकीर्तनो प्राय, और वे क्या करेंगे, कहते हैं कि संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। यजंती ही सुमेधस, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही लोग इस अवतार को समझ पाएंगे। सुमेधस, आप देखिए ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने किया। कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णन किया। त्विषा अकृष्णम, उनका रंग भी गोरा था। संग उपंग, उनके शरीर की कांति, शरीर भी बहुत सुंदर था। और सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वे अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने यज्ञ संकीर्तन प्राय, उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया। इस प्रकार से भागवत प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। और इस बात पर वही व्यक्ति विश्वास करेगा जो सुमेधस, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और सुमेधा का अर्थ होता है सुष्टु बुद्धि। जो बहुत बहुत बुद्धिमान है वही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को समझ पाएगा कि वे कृष्ण हैं। यहां पर भी कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे होंगे कि ये चैतन्य महाप्रभु क्यों कर रहे हैं, परंतु बुद्धि लगाइए, श्रद्धा के साथ यदि आप सुनेंगे तो निश्चित पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं और भागवत इसका प्रमाण है। आगे कहते हैं कलयुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन। कलयुग में हरि संकीर्तन, कीर्तन, कलयुग का धर्म कीर्तन करना है, परंतु अकेले अकेले नहीं, संकीर्तन साथ साथ कीर्तन करना है। क्योंकि अकेले में यदि कीर्तन करते हो तो कलयुग का प्रभाव इतना है कि मान लीजिए अकेले माला लेकर घर पर बैठे तो 5-5 मिनट में सोते रहोगे, परंतु वही यदि 5 लोगों के बीच में यदि माला जप रहे हो तो कोई नहीं सोएगा, नींद आएगी, परंतु सोचेगा यदि मैंने जप की मार दिया तो बाजू वाला क्या सोचेगा। तो एक दूसरे के भय से लोग ठीक से भक्ति करते हैं, इसलिए अकेले अकेले भक्ति नहीं करनी चाहिए, और अकेले में कोई भक्ति कर भी नहीं सकता है कितना भी प्रयास करे। कुछ लोग मंदिर में आते हैं तुरंत सोचते हैं कि अरे बाप रे, मैं तो कितनी अच्छी माला जप रहा हूं, अब घर पे जाकर भी जपूंगा, जैसे ही घर पर जाते हैं जाकर सो जाते हैं। मंदिर में नींद आती है फिर भी नहीं सो सकता है, क्योंकि लोगों का प्रभाव होता है, क्योंकि हमसे वरिष्ठ भक्त भी हमारे साथ होते हैं, उनकी शक्ति मिलती है। इसलिए कलयुग के प्रभाव के कारण कलयुग में संकीर्तन धर्म कहा गया है, साथ साथ कीर्तन करना है। तो कलयुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकाश लेन श्री चैतन्य नारायण। तो भगवान चैतन्य ने यह हरि संकीर्तन का प्रवर्तन किया। कलयुगे संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्वोपरि करे। तो कलयुग में सभी लोगों को संकीर्तन धर्म सिखाने के लिए, संकीर्तन धर्म का उपदेश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण अपने धाम में बैठे हैं और अपने जितने भी पार्षद हैं, परिकर हैं, एक एक करके सबको नीचे भेज रहे हैं कि अनंत की शिव विरिंचि ऋषि गण जत अवतारेर पारिषद आप्त गण। सबसे पहले शिव जी को, ब्रह्मा जी को भेजा भगवान कृष्ण ने। अब भगवान को यहां पर आना है, पृथ्वी पर आना है, तो भगवान अकेले नहीं आते हैं। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, आजकल का कोई नेता, कोई राजा भी यदि घर से निकलता है तो 5-10 बॉडीगार्ड होते हैं और कई लोग साथ में घूमते हैं। ते तो नेता के भी नेता और स्वामी के भी स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नेता है, तो क्या अकेले आएंगे? नहीं, साथ में कई लोगों को लाना था, इसलिए शिव जी और ब्रह्मा जी को भेजा। तो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में इस कलयुग में जन्म लिए और शिव जी और विष्णु ये दोनों के मिलित तत्व अद्वैत आचार्य के रूप में यहां पर जन्म लिए। भागवत रूपे जन्म हईल सवार, कृष्ण से जाने न जार अंशे जन्म जार। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी पार्षद थे, जितने भी गोप ग्वाल सखा जो भी थे, सबको भगवान ने आज से 524 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी में भेजा। कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटी ग्राम में। कहां पर जन्म हुआ ये सब लोगों का? कुछ लोगों का जन्म नवद्वीप में हुआ। ये नवद्वीप बंगाल, बंगाल में कलकत्ता में मायापुर नामक जगह में नवद्वीप है और नवद्वीप में एक द्वीप का नाम है नवद्वीप। तो इसमें से कुछ लोगों का जन्म नवद्वीप में हुआ और कुछ लोगों का चाटी नाम के ग्राम में जन्म हुआ। केहो राढ़े ओड्र देशे श्री हटे पश्चिम में। कुछ लोगों का राढ़ देश में, कुछ लोगों का ओड्र देश में और कुछ लोगों का पश्चिमी देश में हुआ। नाना स्थाने अवतीर्ण हेला भक्त गण नवद्वीपे आसी हेल सभार मिलन। सब लोग अलग अलग आजू बाजू के गांव में सबका जन्म हुआ और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये सब लोग बड़े होकर एकत्रित होंगे, आपस में मिलेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। नवद्वीपे हैव प्रभुर अवतार अतएव नवद्वीपे मिलन सभार। नवद्वीप नाम के जगह में भगवान का अवतार होने वाला था, इसलिए ये सब लोग आगे चलकर नवद्वीप में मिलेंगे और मिलकर सुंदर सुंदर लीला रचेंगे। नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाही। नवद्वीप जैसा गांव त्रिभुवन में नहीं है। त्रिभुवन में सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ गांव यदि कोई है तो है नवद्वीप। क्यों, क्या है ऐसा उसमें? क्योंकि जाही अवतीर्ण हेला चैतन्य गोसाई। क्योंकि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप गामे कोनो महाप्रियर से जन्म अन्य स्थाने। श्रीवास पंडित आर श्रीराम पंडित श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित। तो भगवान कृष्ण सभी पार्षदों को भेजने लगे, नारद मुनि को भेजे, ब्रह्मा को भेजे, शिव जी को भेजे, भगवान विष्णु को भेजे, सब को भेजे और सब लोग अलग अलग रूप धारण करके नवद्वीप में, नवद्वीप के आजू बाजू में जन्म लेने लगे। तो कुछ लोग, एक व्यक्ति शिवास पंडित के रूप में जन्म लिया, एक राम पंडित के रूप में, एक चंद्रशेखर के रूप में, इस प्रकार से अलग अलग रूप में सबका जन्म हुआ। भव रोग वैद श्री मुरारी नाम जार श्री हटे ये सब वैष्णवेर अवतार। और भव रोग के लिए वैद्य, भव रोग को मिटाने वाले श्री मुरारी नाम के भक्त का जन्म भी वहां पर हुआ। पुंडरिक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम चाटी ग्राम हेल इहा सभार प्रकाश बूढ़ ने हेला अवतीर्ण हरिदास। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों का अवतार अलग अलग जगह पर होने लगा और स्पेशल ब्रह्मा जी का अवतार, ब्रह्मा जी का जन्म चाटी नाम के गांव में हुआ और ब्रह्मा जी का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ। ब्रह्मा जी मुसलमान परिवार में जन्म क्यों लिए? जो जन्म से ही पाप करने वाले हैं, क्रूर हृदय वाले हैं। इसके पीछे भी कथा है कि द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। क्या गलती की थी? भगवान श्री कृष्ण अपने गोप ग्वाल सखाओं के साथ जब गाय और बछड़े चराने गए थे तो ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को चुरा लिया था और बाद में सभी गोप ग्वाल सखाओं को चुरा लिया था। तो भगवान को अपने भक्त से अलग करने के कारण ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा अपराध हुआ और इस अपराध का फल क्या हुआ? ब्रह्मा जी का दूसरा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, परंतु फिर भी अगले जन्म की भक्ति होने के कारण वे मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी वे भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और भक्त में भी सर्वोच्च परम सीमा में एक दिन में वे 3 लाख नाम का जप करते थे। कितना? 3 लाख नाम। हम लोग 20-22 हजार नाम, जो 16 माला जप करते हैं तो 16 माला में 21 से 25 हजार तक नाम जप होता है, परंतु हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे। इसका अर्थ कितना माला हुआ? 3 लाख अर्थात 200-300 माला होता होगा प्रतिदिन। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ। तीरोते परमानंद पुरी र प्रकाश, नीला चले जार संगे एकत्र विलास। फिर परमानंद पुरी का जन्म हुआ और उसका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ और ये सब भक्त फिर जगन्नाथपुरी में भी मिलेंगे। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल थाकिते, वैष्णव जन्मये केन सोच्य देशेते। आपने हैला अव तीर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षद केने जन्माये न दूरे। ये सब लोग का जन्म गंगा जी के तट पर ही हुआ। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान का जन्म भी गंगा के तट पर होगा, इसलिए। और भगवान ने यह भी सोचा कि जब द्वापर युग में मैंने जन्म लिया तो यमुना को सौभाग्य प्रदान किया, यमुना के किनारे पर रहा और यमुना में स्नान किया, यमुना में खेला। अब कलयुग में जन्म ले रहा हूं तो गंगा को सौभाग्य देना चाहिए, इसलिए कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में गंगा के तट पर अवतार लिए और अपने सभी भक्तों को गंगा के तट पर जन्म कराए। से सब जीवेर कृष्ण वत्सल हैया, महाभक्त सब जन्मा येन आज्ञा दिया। इस प्रकार से कृष्ण की आज्ञा से सब भक्त के रूप में इस संसार में अवतरित हो चुके हैं। संसार तारित्य श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे करी या छेन अंगीकार। इस संसार को तारने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। ये साक्षात महाप्रभु ने, भगवान ने अपने मुख से स्वीकार किया है। जे देशे जे कुले वैष्णव अवतरे, ताहर प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तरे। अब जहां पर महाप्रभु का जन्म हुआ है उस स्थान की महिमा बताते हैं कि महाप्रभु के जन्म से पहले वहां पर भक्तों का जन्म हुआ और जहां पर भक्तों का जन्म होता है जिस देश में जिस स्थान में, तो उस देश की महिमा लाखों लाखों योजन तक फैलती है। अतएव सर्व देश निज भक्तगण अवतीर्ण केला श्री चैतन्य नारायण। तो इस भूमि को पवित्र करने के लिए, अपने भक्तों के प्रभाव से भूमि को पवित्र करने के लिए भगवान ने अपने पहले भक्तों को इस पृथ्वी पर जन्म कराया और जन्म करा के अवतरिवेन प्रभुआ जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करी थुई लेन तथा। सभी भक्तों का जन्म करने के बाद चैतन्य महाप्रभु आगे चलकर जन्म लेंगे और सभी भक्तों के साथ लीला करेंगे। कृष्ण नाम भक्ति शून्य सकल संसार। अब वृंदावन दास ठाकुर आज से 524 वर्ष पूर्व की स्थिति का वर्णन कर रहे थे, कैसे लोग वहां पर रह रहे थे और किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। वे कहते कि 524 वर्ष पहले कृष्ण नाम भक्ति शून्य सकल संसार। कृष्ण नाम की कोई वस्तु नहीं थी और भक्ति शून्य यह सकल संसार, यह सारा संसार भक्ति शून्य था। कोई भक्ति और भगवान को नहीं मानते थे। प्रथम कलिते है ते भविष्य आचार। यद्यपि कलयुग का प्रारंभ था परंतु कलयुग के प्रारंभ में ही कलयुग के अंत में जितनी दुष्टता होती है वैसी दुष्टता कलयुग के प्रारंभ में ही हो गई। धर्म कर्म लोक सभे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। लोग भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस यही सोचते हैं कि हमने इस परिवार में जन्म लिया है तो यही मेरे माता, यही मेरे पिता, यही मेरे पुत्र और इसी के साथ रहो और मरो। भगवान के बारे में कोई नहीं जानता था। और थोड़ा यदि कोई श्रद्धालु होता, कुछ मेहनत करता तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए मेहनत करता, भगवान के लिए कोई कुछ नहीं करता था। और कुछ लोग और श्रद्धालु होते तो अपनी श्रद्धा देवी देवताओं में निहित कर दिए थे, चंडी देवी की, महाकाली की पूजा में अपना सारा समय बिताते रहते थे। और दंभ करी विष हरि पूजे कौन जाने, पुतली करिए केहो दिया बहु धने। लोग दान तो करते थे परंतु कैसा दान करते थे, कहते तमोगुणी दान करते थे। दान भी करना चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए। लोग अपना बहुत धन इस्तेमाल करते थे, किसमें, कहते हैं काली देवी की मूर्ति बनाने में। और काली देवी की मूर्ति बनाकर बकरे की बलि देना, फिर नाना प्रकार के शराब पी पी कर मदमस्त होना, इस प्रकार से सब लोग इसी बात को अपना धर्म मानते थे। धन नष्ट करे पुत्र कन्या र विभाय। और कुछ लोग अपना सारा धन अपनी कन्या के विवाह में, अपने पुत्र के विवाह में नष्ट करते थे, भगवान की भक्ति में थोड़ा भी धन नहीं लगाते थे। यही मत जगत तेरा व्यर्थ काल जाए। और इसी प्रकार सारे जगत में सब लोग का समय व्यर्थ का ही जा रहा था, कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता था। जेवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब ताहा रावो ना जाने ये ग्रंथ अनुभव। यद्यपि ज्ञानी और पंडित बहुत लोग थे, भट्टाचार्य का अर्थ होता है जो न्याय और मीमांसा में प्रवीण होते हैं, चक्रवर्ती का अर्थ होता है जो कर्म कांड में प्रखर होते हैं, और विभाय का अर्थ होता है मिश्र का अर्थ होता है कि सभी वेद को जानने वाले। तो सब लोग शास्त्र को जानते थे, वेदों को पढ़ते थे, परंतु वेदों का सार जो है, वेदों का सार है कृष्ण की भक्ति करना। वेद को जानते थे परंतु वेदों के सार को ग्रहण नहीं करते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे, उनका नाम नहीं लेते थे। शास्त्र पढ़ा या सबे यही कर्म करे, श्रोतार सहित जम पाशे बंधी मरे। और इस प्रकार शास्त्र से विरुद्ध, कहीं भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि काली देवी को बकरे की बलि देनी चाहिए जिससे वे प्रसन्न होती हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु ऐसी ऐसी बातों को ले लेकर और इस प्रकार से बलि दे देकर पाप कर करके लोग यमराज के द्वार में जाकर खड़े रहते थे, नरक में जाते थे। ना बखाने जुग धर्म कृष्णे र कीर्तन, दोष वही गुण करो ना करे कथन। वास्तव में सभी शास्त्रों का सार निचोड़ है भगवान श्री कृष्ण का नाम, परंतु यह कोई नहीं जानता था। जेवा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, ता सब हार मुखे वो नाही हरिध्वनि। कुछ लोग बहुत तपस्वी होते थे, बहुत लंबी लंबी तपस्या करते थे। कुछ लोग बहुत वैरागी होते थे, जन्म से ही निकल जाते थे जंगल में, परंतु ऐसे लोगों के मुख में भी भगवान का नाम नहीं आता था। अति बड़ सुकृति से स्नारे न समय, तो भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कुछ लोग जो थोड़े बहुत सुकृति रखते थे, थोड़े बहुत सुकृति वाले लोग स्नान करते समय, ठंडी की ऋतु में, ठंडी की सीजन में पानी बहुत ठंडा होता है और गंगा में तो बहुत ठंडा पानी होता है, तो ठंडी की ऋतु में कुछ समय स्नान करते करते यदि पानी ठंडा लग गया तो गोविंद पुंडरीकाक्ष उच्चार इस प्रकार से उच्चारण करते थे। तो ठंडा पानी लगने पर या कुछ मुसीबत आने पर कभी कभार भगवान को याद कर लेते थे, बाकी भगवान की भक्ति करने वाले कोई नहीं थे। गीता भागवत जे जे जने वा पढ़ाए भक्ति र व्याख्यान नहीं ताहर जिवाए। कुछ लोग गीता और भागवत भी पढ़ते थे परंतु गीता और भागवत का सार भक्ति नहीं रखते थे। वास्तव में भगवत गीता का सार है भगवान की भक्ति करना। गीता के अंत में गीता का सार बताते हुए कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। हे अर्जुन सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ग्रहण कर और मन मना भव मद भक्तो, मेरा मनन कर, मेरा चिंतन कर, मेरा नाम ले और मेरी भक्ति कर। यह है गीता का सार। परंतु वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कुछ लोग गीता तो पढ़ते थे परंतु गीता पढ़ने के बाद गीता का सार लिखते थे। गीता सार, दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे देवता है, भगवान है। आजकल भी लोग लिखा करते हैं गीता सार, वास्तव में वो गीता सार नहीं है। अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोग अपनी बुद्धि से लिख देते हैं। गीता का तो एक ही सार है सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सब छोटे बड़े धर्म को छोड़कर एकमात्र कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण की भक्ति करना। अरे कृष्णा। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं गीता भागवत पढ़े, गीता भागवत तो पढ़ते थे परंतु उनका सार बिल्कुल गलत निकालते थे वे लोग। ये तब की बात नहीं है, अब की भी बात है। गीता का सार, दुकान हमारा मंदिर, ग्राहक हमारे भगवान। और कहीं जगह पर गीता का सार बहुत लोगों ने लिखा है, कुछ जगह पर लिखा है कि आप धन से बिस्तर खरीद सकते हो परंतु नींद नहीं, आप धन से सुख खरीद सकते हो परंतु शांति नहीं। बस केवल शब्द बिठा दिए हैं और शब्द बिठ गए, कह दिया गीता का सार। कुछ लोग गीता का सार निकालते हैं कि हमें कृष्ण की भक्ति नहीं करनी है क्योंकि वो तो निराकार है, और यदि कृष्ण आकार है तो कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है उनकी भक्ति करनी है। ते सब मूर्ख लोगों की मूर्खता है। गीता भागवत को पढ़ते हैं परंतु उसका सार नहीं जानते हैं। भागवत का सार अंत में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम और संकीर्तन करना ही सबसे बड़ा और सबसे मुख्य धर्म है। यद्यपि अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म है, सतयुग का धर्म है ध्यान करना, त्रेता युग का धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग का धर्म है पूजा करना, अर्चन करना, और कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन करना। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म, परंतु सभी युगों में नाम की महिमा तो समान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव। नाम का प्रभाव केवल कलयुग में ही नहीं, चहु जुग चहु श्रुत चारों युगों में और सभी श्रुतियों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष नहीं आनु पाऊ। परंतु कलयुग में तो इस नाम के अलावा किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो गीता और भागवत का सार भगवान की भक्ति, भगवान का नाम है। परंतु उस समय गीता और भागवत कुछ लोग पढ़ते थे परंतु उसका सार नहीं जानते थे। यही मत विष्णु माया मोहित संसार, और इसी प्रकार भगवान विष्णु की माया से यह सारा जगत मोहित था। भगवान की माया सबको मोह में डाल रही थी और सबको दुखी कर रही थी। सेई नवद्वीपे वैसे वैष्णव वाग्र गण्य। अब देखे, अब इस कहानी में एक नए पात्र आ रहे हैं। सबसे पहले वर्णन किया कि उस समय कैसी स्थिति थी, कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं, कृष्ण के नाम को नहीं जानते थे। परंतु अब थोड़ा सुख मिल रहा है क्योंकि उस नवद्वीप में सेई नवद्वीप पे वैसे वैष्णव आग्र गणिया, उस नवद्वीप में एक वैष्णव रहते थे। कौन? अद्वैत आचार्य नाम सर्व लोके धन्य। परंतु उस नवद्वीप में एक भक्त एक वैष्णव रहते थे जिसका नाम था अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य नाम के एक भक्त रहते थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर, ज्ञान और भक्ति में गुरु थे, बहुत बड़े थे। कृष्ण भक्ति बखानी थे जय हेन शंकर। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करते थे? कहते हैं जैसे भगवान शंकर कृष्ण की भक्ति करते हैं, वैसे अद्वैत आचार्य नित्य निरंतर भगवान के नाम में और भगवान की कथा में डूबे रहते थे। शिव जी का दृष्टांत दे रहे हैं। कुछ लोग शिव जी के बारे में जानते ही नहीं है। वास्तव में शिव जी भगवान के भक्त में सर्वश्रेष्ठ है, अग्रगण्य है। कहते हैं कि जैसे सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, और देवताओं में भगवान अच्युत भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, पुराणों में जैसे भागवत श्रेष्ठ है, वैसे वैष्णव में यदि कोई श्रेष्ठ शिरमोर यदि कोई है तो है वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी। भगवान की भक्ति में कृष्ण भक्ति में शिव जी के समान थे अद्वैत आचार्य। त्रिभुवने आचे जत शास्त्र परचार, सर्वस्त्र बखाने कृष्ण पद भक्ति सार। अद्वैत आचार्य बहुत प्रयास करते थे कि शास्त्रों का सार भगवान की भक्ति के रूप में प्रकट करने का। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। और प्रतिदिन अद्वैत आचार्य के पास एक शालिग्राम शिला थी, और इस शालिग्राम शिला को प्रतिदिन गंगा जल अर्पण करते थे, और गंगा जल के साथ तुलसी दल को अर्पण करते थे, और गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके हुंकार करिए कृष्ण आवे शेर तेजे, जे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ हेरे वाजे। कहते थे हे कृष्ण आप मेरी पुकार सुनो, और आप इस पृथ्वी पर अवतार धारण करो। प्रतिदिन डेली शेड्यूल था कि रोज अपने शालिग्राम शिला को तुलसी दल अर्पण करते थे, गंगा जल अर्पण करते थे, और भगवान को जोर जोर से बुलाते थे कृपया करके अवतार धारण करो, आप प्रकट हो। और कहते हैं कि अद्वैत आचार्य की ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के पास पहुंचती थी। जे प्रेमे रहुंकार सुनिया कृष्ण नाथ, भक्ति वेशे आप नहीं हईला साक्षात। अत एव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य, निखिल ब्रह्मांड जार भक्ति योग धन्य। वास्तव में अद्वैत आचार्य की पुकार से ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, चैतन्य महाप्रभु जन्म लेंगे। परंतु अभी भी अद्वैत आचार्य की पुकार पूरी नहीं हुई है। भगवान चाहते हैं कि ये और भी मुझे पुकारे। यही मत अद्वैत वैसेन नदी आए, भक्ति शून्य सब लोग देखी दुख पाए। तो अद्वैत आचार्य नवद्वीप में रहते थे और भगवान के महान भक्त थे, परंतु दूसरे लोगों को देख कर के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए भी बहुत दुखी होते थे। सकल संसार मत व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे। मन ही मन सोचते थे कि यह सारा संसार भक्ति शून्य हो चुका है, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, यह सोच सोच कर बहुत दुखी हुआ करते थे। निरवधि नित्य गीति वाद कोला हले, ना सुने कृष्णेर नाम परम मंगले। निरवधि निरंतर वे नृत्य करते थे, गीत गाते थे और भगवान का नाम लिया करते थे। कृष्ण शून्य मंगले देवेर नाही सुख, विशेषे अद्वैत बड़ पाय मन दुख। इस संसार की स्थिति को देखकर संसार के लोग बहुत बहुत प्रयास करते थे, परंतु बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी सुखी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भक्ति की कमी थी। इसलिए संसार के लोगों को देखकर अद्वैत आचार्य बहुत दुखी रहा करते थे। स्वभावे अद्वैत बड़ कारुण्य हृदय, जीवेर निस्तार चिंते हई या सदई। अद्वैत आचार्य का हृदय बहुत करुण था, बहुत नरम हृदय वाले थे, इसलिए संसार के दुखी जीवों को देखकर अद्वैत आचार्य मन ही मन में सोच रहे हैं कि मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार तबे हय ए सकल जीवर उद्धार। अद्वैत आचार्य बहुत प्रयास किए लोगों को भक्त बनाने का, परंतु कोई नहीं बने। तब अद्वैत आचार्य कहते हैं कि यदि मेरे प्रभु, यदि मेरे कृष्ण इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगे तो ही इस संसार का उद्धार होगा, अन्यथा संसार का उद्धार नहीं हो सकता। तबे तो अद्वैत सिंह आमार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखाय ए थाई। आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाचाई गाईव सर्व जीव उद्धारिया। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि यदि मैं भगवान का अवतार नहीं कराया तो मेरा नाम व्यर्थ जाएगा। संसार के लोग मुझे अद्वैत सिंह कहते हैं, पता है ना, किसी के नाम के पीछे सिंह लगता है, जैसे हमारे बीच में ही है राम सिंह। परंतु सिंह बिल्ली को देखकर डर जाए उसे सिंह नहीं कहा जाता है। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि यदि मैं भगवान का अवतार नहीं करा पाऊंगा तो मैं सिंह नहीं, मेरा नाम डूब जाएगा। इसलिए जोर जोर से भगवान को पुकारते थे। निर्वधि यही मत संकल्प करिया, सेवे न कृष्ण चंद्र एक चित हैया। प्रतिदिन अद्वैत आचार्य सोचते थे कि भगवान पृथ्वी पर जन्म लेंगे, भगवान जन्म लेंगे, और भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना किया करते थे। अद्वे तेरे कारणे चैतन्य अवतार, सही नव दिव्य वैसे पंडित श्रीनिवास। उसी नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के साथ एक श्रीवास नाम के भक्त रहते थे, जहां मंदिर है चैतन्य विलास। और इस श्रीवास पंडित जो थे, श्रीवास नाम के भक्त थे, उनके घर का जो हॉल था बहुत बड़ा था, इसलिए आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर प्रतिदिन कीर्तन किया करते थे। सर्वकाल चारी भाई गाय कृष्ण नाम, त्रिकाल करिए कृष्ण पूजा गंगा स्नान। तो ये श्रीवास पंडित चार भाई थे और चारों भाई रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा नदी में स्नान करते थे और रोज सुबह प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन किया करते थे। और आप सब तो जानते हैं, भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं तो किसी के मातम में बैठे हैं ऐसा कीर्तन नहीं करते हैं, बहुत जोर से, उत्साह से मृदंग और करताल बजा बजा कर कीर्तन करते हैं। तो ये चारों भाई जब अपने घर पर कीर्तन करते थे तो वहां के जो दुष्ट लोग है उसे पता चल जाता था और आपस में मीटिंग करके सब लोग कहते थे कि ये सुबह सुबह उठ उठ कर हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक से सोने भी नहीं देते हैं। और सब लोग धमकी देने लगे कि यदि आप चारों ने यह कीर्तन बंद नहीं किया तो हम तुम्हारा सारा घर और घर का सामान गंगा में फेंक देंगे। इस प्रकार से जो बेचारे थोड़े बहुत लोग भी भक्ति करते थे उसे भी संसार के लोग सताते थे, भक्ति करने से इनकार करते थे। दग्ध देखे सकल संसार भक्त गण, आला पेर स्थान नाही करे न क्रंदन। इस प्रकार से भगवान के जो भक्त थे बहुत दुखी रहा करते थे और सभी भक्त अद्वैत आचार्य, श्रीवास, उनके भाई, ये सब लोग जब आपस में मिलते थे तो आपस में मिलकर रोने के अलावा और कुछ नहीं बचता था। रोना भी हमारी तरह रोना नहीं, संसार के भौतिक भोग के लिए नहीं रोते थे कि हमारे पास धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, भगवान के लिए रोते थे। देखिए, रोना तो सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो रोना नहीं जानता है, परंतु हमें रोना भी चाहिए तो भगवान के लिए रोना चाहिए, संसार की वस्तु के लिए नहीं रोना चाहिए। और यदि हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान निश्चित प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बालक, छोटा सा बालक को छोड़कर माँ चली जाती है तो बालक चिल्लाता है, फिर भी माँ जाती नहीं है, परंतु बालक यदि रोने लगे तो माता कैसे भी काम में क्यों न हो तुरंत दौड़कर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, परंतु इतना भगवान ध्यान नहीं देते हैं। परंतु भक्त यदि रो रो कर भगवान को पुकारे तो निश्चित भगवान अपने सभी कार्य को छोड़कर उस भक्त के पास आ जाते हैं। अद्वैत आचार्य शिवास इत्यादि सभी भक्तगण रो रो कर भगवान को पुकार रहे थे और दुख भावी अद्वैत करेन उपवास। और सब लोग इतने दुखी रहा करते थे, इतने दुखी रहा करते थे कि वे लोग उपवास शुरू कर दिए कि अब हम कुछ खाएंगे नहीं। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि दुख भावी अद्वैत करेन उपवास, सब लोग दुखी थे इसलिए उपवास कर रहे थे, परंतु आज हमारी स्थिति कैसी है, हम उपवास रखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। वे लोग संसार को दुखी देकर उपवास करते थे, दुखी थे, देखो हाँ कर रहे हैं। वे लोग दुखी हैं इसलिए उपवास कर रहे थे और हम लोग उपवास करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। सोचते हैं कब, साल में एक बार पांडव एकादशी के दिन निर्जला कुछ लोग रहते होंगे, घड़ी देखते रहते हैं कब सुबह होगी कब। तो दुखी होकर सब लोग उपवास किए। सकल वैष्णव गणे छोड़े दीर्घ श्वास और दीर्घ सांस छोड़ने लगे। केने वा कृष्णेर नित्य केने वा कीर्तन कारे वा वैष्णव बोली की वा संकीर्तन। फिर भी कुछ लोग मन ही मन भगवान का नाम लेते थे, कुछ लोग धीरे धीरे, कुछ लोग जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे। किछु नाही जाने लोक धन पुत्र रसे सकल पाषंड मेली वैष्णव रे हासे। और ये लोग भगवान का नाम लेते थे और संसार के लोग इसके ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये लोग क्या नाम ले रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज भी यदि आप रास्ते में चलते हुए सिगरेट पीते हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, शराब की बोतल पीते पीते जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, तंबाकू गुटखा जर्दा खाते हुए जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु करतार लेकर हरे कृष्ण करते करते जाओ तो 10 लोग कहेंगे ये क्या है, पागल हो गया है। बिना कपड़े छोटे छोटे कपड़े पहनकर रास्ते में नाचने लगो तो सब लोग तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परंतु परम पवित्र करने वाला भगवान का नाम यदि कोई लेता है तो कहते हैं तो पागल हो गए हैं। वास्तव में पागल भगवान का नाम लेने वाले नहीं है, पागल भगवान का नाम जो नहीं लेते हैं वो है। कभी कभी भक्तों को भी मन में दुख होता है कि संसार के सब लोग क्यों हमें ऐसा कहते हैं, परंतु मैं तो यही कहता हूं कि डरना नहीं चाहिए, ये दुनिया पागलों की दुनिया है। इस संसार में भक्त बहुत कम है, बहुत थोड़े मात्रा में, करोड़ों में कोई एक भक्त निकल जाएगा। यदि दुनिया का रेशियो निकाला जाए, हिसाब किताब, करोड़ों में एक भक्त होगा। भक्त की संख्या बहुत कम है और अभक्त पापी ज्यादा है, इसलिए पापी लोग क्या कहते हैं कि ये लोग पागल है। जैसे पागल खाने में आप जाओ तो पागलों की संख्या बहुत होती है और डॉक्टर 3-4 होते हैं, और सफेद कोट में डॉक्टर जब उस पागल खाने में जाते हैं तो पागल लोग आपस में बात करते हैं, देखो देखो अब सावधान हो जाओ पागल आ गए हैं। परंतु डॉक्टर जानते हैं पागल कौन है और अच्छा कौन है। ठीक उसी प्रकार भक्त जानते हैं कि वास्तविक पागल कौन है। तो वैष्णव मेरे यहां से वैष्णव को देखकर, उनके कीर्तन को देखकर सब लोग हंस रहे थे। चारी भाई श्रीवास मिले या निज घरे निशा हैले हरि नाम गाय उच्च स्वरे। सब लोग इस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन फिर भी करते रहते थे और निरंतर भगवान की पुकार, भगवान को याद किया करते थे। छाड़ी लेन भक्त गण सर्व उपभोग अव तरीवारे प्रभु करीला उद्योग। अब भक्तों से रहा नहीं जा रहा था, कहते अब तो भगवान को आना ही होगा, और सब लोग भगवान को प्रकट कराने के लिए उद्योग करने लगे। उद्योग का इंग्लिश में अर्थ होता है बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है, लक्ष्मी प्रकट करना, और ये लोग का उद्योग क्या था, कृष्ण को, नारायण को प्रकट करना। इस संसार में सब लोग लक्ष्मी को प्रकट करने में पड़े हैं, लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी आज की नारी की तरह थोड़ी ना है किसी के भी घर पे जाकर बैठ जाएगी। लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के साथ ही रहती है। तो कोई यदि नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी को पुकारे, लक्ष्मी को चाहे, तो अपने पति को छोड़कर लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। परंतु यदि आप लक्ष्मी को न पुकारो, केवल नारायण को पुकारो, भगवान कृष्ण को पुकारो, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। सुदामा ने कृष्ण से मांगा नहीं, बिना मांगे कृष्ण ने सुदामा को अपने जैसी द्वारका नगरी ही दे दी, माला माल कर दिए। इस प्रकार भगवान, जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, निश्चित से धन मिलता है। ये लोग भगवान को प्रकट कराने के लिए उद्योग करने लगे। ईश्वर आज्ञाय आगे श्री अनंत धाम राधे अवतीर्ण हेला नित्यानंद राम। अब जब भक्त लोग बहुत करुण स्वर से पुकारने लगे, भगवान को याद करने लगे, आप आइए आइए, तब भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान ने सोच लिया कि अब मुझे अवतार लेना है। परंतु जैसे कृष्ण अवतार में भी कृष्ण से पहले बलदेव जी का अवतार हुआ, वैसे यहां पर भी भगवान कृष्ण ने अपने अवतार के पहले बलदेव जी को भेजा। कहते हैं ईश्वर आज्ञाए, भगवान कृष्ण की आज्ञा से बलदेव जी राड देश में जन्म लिए और उनका नाम हुआ नित्यानंद राम। बलराम नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने, त्रयोदशी थी माघ मास और शुक्ल पक्ष, और पद्मावती के गर्भ से एक चक्र नाम के गांव में नित्यानंद प्रभु का अर्थात बलदेव जी का जन्म हुआ। हड़ाई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज, उनके पिताजी का नाम क्या था? कहते हड़ाई पंडित। मूले सर्व पिता ताने करी पिता व्याज। यद्यपि मूल से देखा जाए तो बलदेव जी सबके पिता है, परंतु लीला की दृष्टि से वे हराय पंडित को अपने पिता को धारण किए हैं। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हेला धरी नित्यानंद नाम। ये नित्यानंद और कोई नहीं, साक्षात बलदेव जी ही है। बलदेव जी ही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिषण, संगो पे देवता गण करीला तखन। जब भगवान के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, बलदेव जी का नित्यानंद प्रभु के रूप में इस कलयुग में जन्म हुआ, तो सभी देवतागण पुष्प की, फूलों की वृष्टि करने लगे। सही दिन हेते राढ़ मंडल सकल, बाढ़ते लागिल पुनः पुनः सुमंगल। उसी दिन से वह एक चक्र नाम का गांव और उस गांव में रहने वाले आजू आजू में सभी लोग मंगलमय होने लगे, सुखी होने लगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आए, उनके पहले बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में जन्म ले लिए हैं। अब यहां पर भक्तों की प्रार्थना निरंतर निर्वधि चल रही है और वहां पर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कैसे इस धराधाम पर मैं प्रकट होऊं, जन्म लू, वह सोच रहे हैं। और यहां पर वृंदावन दास ठाकुर नवद्वीप में एक ऐसे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराने जा रहे हैं जिस व्यक्ति के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। आइए उस व्यक्ति के बारे में, उस महान वैष्णव के बारे में वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं कि नवद्वीप नाम के धाम में, नवद्वीप नाम के शहर में एक जगन्नाथ मिश्र नाम के भक्त रहते थे। उनका नाम जगन्नाथ था और वे मिश्र थे, अर्थात बहुत बड़े पंडित थे। और वसुदेव प्राय वे कौन थे? कहते हैं द्वापर लीला में, द्वापर युग में वे वसुदेव जी थे। और वसुदेव ही इस कलयुग में जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतरित हुए। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्रवर,
द्वीपे आ छे जगन्नाथ मिसवारा
वासुदेव प्राय ते हो सधर्मे तत्पर
वासुदेव प्राय ते हो सधर्मे तत्पर।
उनके चरित्र के बारे में कह रहे हैं, कहते हैं उदार चरित्र ते हो ब्राह्मणे रसीमा
उदार चरित्र ते हो ब्रह्मये रसीमा
उदार चरित्र ते हो ब्रह्मणे रसीमा
उदार चरित्र ते हो ब्रह्मणे रसीमा।
कहते उनका चरित्र उदार था, बहुत उदार थे, हृदय के उदार भाव के थे, सबके ऊपर प्रेम था उनका और सबके प्रति सम दृष्टि वाले थे। उदार चरित्र ते हो ब्रह्मणे रसीमा
उदार चरित्र ते हो ब्रह्मणे रसीमा
केन नाही जहा दिया जिसकी उपमा किसी के साथ नहीं दी जा सकती है। इस संसार में उससे अच्छा कोई था ही नहीं, यदि कोई अच्छा हो तो उपमा दी जाए। की कश्यप दशरथ वसुदेव नंद
कश्यप दशरथ वसुदेव नंद
की कश्यप दशरथ अगले जन्म में जो वसुदेव थे और उसके अगले जन्म में जो कश्यप जी थे वे ही इस कलयुग में जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतरित हुए हैं। की कश्यप दशरथ वसुदेव नंद
कश्यप दशरथ वसुदेव नंद
सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र सभी तत्वों के तत्व जिसके पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेने वाले हैं, ऐसे सभी तत्व के तत्व जगन्नाथ मिश्र और कोई नहीं वसुदेव और कश्यप ही थे। तान पत्नी सची नाम जगन्नाथ मिश्र की पत्नी का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था शशि और वे पतिव्रता थी, अपने पति के आज्ञा का पालन करने वाली, पति के नीति के अनुसार चलने वाली, इसलिए कहते हैं तान पत्नी शशि नाम महापति लगता है भक्ति ही माता सची का रूप धारण करके खड़ी हो ऐसा प्रतीत होता था भगवान की परम भक्ता। देखिए पिता भी भक्त हैं और माता भी भक्त हैं और निश्चित जो पति और पत्नी भक्त हैं और दोनों भक्ति करते हैं और उनके पुत्र के रूप में निश्चित भगवान ही जन्म लेते हैं। कभी कभी प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हुए भारत में ही क्यों हुए। अब देखिए भगवान के जितने भी अवतार परशुराम अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार सब भारत में, अमेरिका में क्यों नहीं हुआ। अमेरिका वाले पूछते हैं, लंदन वाले पूछते हैं कि आपके कृष्ण का अवतार हमारे देश में क्यों नहीं होता है। तब हमारे गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि भगवान को जन्म लेने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। भगवान उसके घर पर जन्म लेते हैं जिसके माँ और पिता भक्त है। और विदेशों में आज कोई पत्नी एक पति के साथ तो कल सुबह डाइवोर्स करके दूसरे के साथ। भक्ति नहीं है जिसके घर पर भक्ति है, जिसके जो पति पत्नी भक्ति करते हैं भगवान उनके पुत्र बनते हैं।
तान पत्नी सची नाम महापति दाता,
पत्नी सची नाम महापति दाता,
मूर्ति मई विष्णु भक्ति से जगन माता,
मूर्ति मई विष्णु भक्ति से जगन माता,
बहु कन्या पुत्रे
पत्नी शशि, विवाह हो गए बहुत दिन हुआ और धीरे धीरे करके उनके गर्भ से कन्या प्रकट होने लगी, कन्या का जन्म हुआ।
बहु कन्या पुत्रे रहई लती रो भाव,
बहु कन्या पुत्रे रहई लती रो भाव।
जब 18 कन्या की मृत्यु हो गई तब एक पुत्र जन्म लिया।
बहु कन्या पुत्रे रहई लती रो भाव,
बहु कन्या पुत्रे रहई लती रो भाव,
सबे एक पुत्र विश्व रूप महाभाग,
सबे एक पुत्र विश्व रूप महाभाग।
जब 18 कन्या का मृत्यु हो गई तब शची के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम क्या हुआ? विश्वरूप। ये विश्वरूप और कोई नहीं बलदेव जी के अंश थे।
सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग,
सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग,
विश्वरूप मूर्ति जैन अभिनव
जो पुत्र प्रकट हुआ भगवान का परम भक्त क्यों नहीं होगा। माँ भक्त है, पिता भक्त है, पुत्र निश्चित भक्त होते हैं। परंतु माता में कोई भक्ति नहीं है, पिता में कोई भक्ति नहीं है, उनके पुत्र भक्त नहीं, उनके पुत्र तो पापी होते हैं। संसार के लोग मन में प्रश्न करते हैं कि हमारे पुत्र इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? इसका उत्तर यही है कि आप बिगड़े हुए हो इसलिए पुत्र बिगड़े हुए हैं। यदि माता और पिता भक्ति करे तो निश्चित ही के पुत्र भक्त ही हो सकते हैं। कहते हैं कि शची और जगन्नाथ मिश्र के जो पुत्र हैं भगवान के परम भक्त हैं।
विश्व रूप मूर्ति जैन अभिनव देखी हर शीत दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण,
देखी हर शीत हुई ब्राह्मणी ब्राह्मण।
अपने इस पुत्र को देखकर शची और जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न हुआ करते थे क्योंकि जन्म से देखने में भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर गौर वर्ण का गोरा बालक था और भगवान का परम भक्त था। इसलिए माता और पिता बहुत सुख प्राप्त करते थे। आगे कहते हैं,
जन्म है ते विश्व रूपे रहै लावी रती,
जन्म है ते विश्व रूपे रहै लावी रती।
विश्व रूप जन्म से ही विरक्ति थी, जन्म से ही हृदय में वैराग्य था। जन्म से ही भगवान के परम भक्त और हृदय में वैराग्य, इसलिए उन्होंने थोड़े बड़े होकर संन्यास ग्रहण धारण कर लिया। और वे संन्यास ले लिए तो उनके माता पिता बहुत दुखी हुए थे।
जन्म है ते विश्व रूपे है लावीरा, जन्म है ते विश्व रूपे लावीरा, जन्म है ते विश्व रूपे है लावीरा, शैशवे सकल शास्त्र ते है लस्त्रुति, शैशवे सकल शास्त्र ते है लस्त्रुति।
विश्वरूप का जन्म हो गया, बड़े भाई का जन्म हुआ। यहाँ पर भक्तों की प्रार्थना है और भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान का सिंहासन हिल गया और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से धीरे 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 नीचे उतरे। और वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं,
धर्म तीरो भाव है ले प्रभु अवतारे, तीरो भाव है ले प्रभु अवतारे, धर्म तीरो भाव है ले प्रभु अवतारे,
धर्म का विनाश देखकर और अधर्म का बढ़ावा देखकर भगवान के हृदय में बहुत दुख हुआ। भगवान दुखी हुए और जब भगवान से नहीं रहा गया तब कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण सची माता के गर्भ में प्रकट हो गए।
तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान,
राजा रानी का भाव ले चुके थे, गौर वर्ण के हो चुके थे और उस गौर वर्ण के कृष्ण सची माता के घर में प्रकट हो गए।
सची जगन्नाथ देह है ला अधिष्ठान, सची जगन्नाथ देह है ला अधिष्ठान।
सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र के मन में आए और जगन्नाथ मिश्र के मन से सची माता के मन में गए और सची माता के मन से सची माता के हृदय में गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सची माता के गर्भ में आए हैं और जैसे भगवान श्री कृष्ण सची माता के गर्भ में आए उस समय इस संसार के सभी देवी देवतागण आपस में मीटिंग करके भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को स्तुति करने के लिए सची माता के घर पर पधारे। भक्तों जब भगवान जन्म लेते हैं, अवतार धारण करते हैं तो समस्त देवतागण गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त देवी देवतागण, 33 करोड़ देवी देवतागण अलक्षित रूप से सची माता के गर्भ की भगवान की स्तुति करने के लिए आए। सची माता सो रही हैं, जगन्नाथ मिश्र सो रहे हैं, योग माया की निद्रा में सब लोग सोए हुए हैं और उस समय समस्त देवतागण भगवान को स्तुति कर रहे हैं। वो स्तुति कैसी है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं,
राम हरे राम 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 हरे।
देवतागण स्तुति कर रहे हैं, कैसी स्तुति है,
जय जय महाप्रभु जनक सभार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय महाप्रभु जनक सभार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार।
महाप्रभु की जय हो, जो भगवान श्री कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए हैं उनकी जय जयकार हो। और संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन करने वाले महाप्रभु की जय हो।
जय जय वेद
रक्षा करने वाले आपकी जय हो। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले आपकी जय हो। हे गायों की रक्षा करने वाले आपकी जय हो। आपका रूप अद्भुत है, आपकी सुंदरता अद्भुत है, ऐसे अद्भुत भगवान आपकी जय हो।
जय जय सर्व सत्य मय
भगवान को सत्य कह रहे हैं। वास्तव में इस संसार में सत्य यदि कोई है तो वह भगवान कृष्ण। वे स्वयं सत्य हैं, वे जो बोलते हैं वह सत्य हैं, वे जो करते हैं वह सत्य हैं, वे उनका सब कुछ सत्य है। इसलिए ब्रह्मा आदि देवतागण एक बार नहीं, एक श्लोक में नौ नौ बार सत्य कह रहे हैं।
जे तुमी अनंत कोटि
करते हैं, जिनमें अनंत कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, वे भगवान सच्ची के गर्भ में आ गए हैं। अरे भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब कैसा रूप धारण करते हैं, कहते हैं
दिव्य मेघ श्याम वर्ण हैया
सतयुग में शुक्र वर्ण के होते हैं, जो भगवान त्रेता युग में रक्त वर्ण के होते हैं, जो भगवान द्वापर युग में श्याम वर्ण धारण किए हैं, वही भगवान इस कलयुग में पीत वर्ण धारण करके शची के गर्भ में अवतरित हुए हैं।
पीतवास शिव सादी निज चिन्ह धारी पूजा कर महाराज रूपे अवतरी
पीतवास श्रीवासादी निज चिन्ह धारे पूजा कर महाराज रूपे अवतरी
कलियुग
कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आप इस कलयुग में संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन करने के लिए सच्ची माता के घर में पधारे हो, ऐसे भगवान हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। देवता बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। सभी देवता प्रणाम करते हुए स्तुति करते हुए अब सोचने लगे कि भगवान का अवतार लेने का समय निकट आ गया है। इसलिए ब्रह्मा समेत शिव जी समेत समस्त देवतागण गर्भस्थ स्तुति करके वहां से चले गए और यहां पर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं।
सची गर्भे वेशे सर्व भुवने रवास, सची गर्भे
सची माता के गर्भ में भुवन के वास जगत के निवास भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए हैं। वे दिन कौन सा है?
सची गर्भे वैसे सर्व भुवने रवास,
सची गर्भे वैसे सर्व भुवने रवास।
फाल्गुनी पूर्णिमा आसी है ना प्रकाश,
करीब आ गई वह घड़ी निकट आ गई। फाल्गुन पूर्णिमा बिल्कुल निकट आई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बहुत करीब आ चुका है। कहते हैं कि भगवान का जब जन्म प्राकट्य करीब आया, अनंत ब्रह्मांड जत आच सुमंगल, अनंत कोटि ब्रह्मांड में मंगल होने लगे, सभी ब्रह्मांडों में सुख छाने लगा और इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे, पृथ्वी माता जो दुखी हो गई थी वह पृथ्वी माता भगवान का जन्म लेने के कारण सुखी होने लगी। कई दिनों से नदियों में जो पानी सूख गया था वह पानी फिर से बहने लगा और जब पूर्णिमा का दिन आया और उसी समय चंद्र ग्रहण था, चंद्र को ग्रसित करने के लिए राहु निकल पड़ा। नवद्वीप में रहने वाले सब लोग देखा चंद्र ग्रहण होने वाला है, इसलिए गंगा में स्नान करने के लिए गए। कहा जाता है जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए गए उस समय सब लोग भगवान का नाम लेने लगे, हरि बोल हरि बोल। सब लोगों के मुख में भगवान का नाम, भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट होने से पहले ही सब पापी तापी जितने भी जीव थे सबके मुख से हरि ध्वनि निकलने लगी। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं,
सर्व नवद्वीपे देखे हरिन ग्रहण, उठिल मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन। अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नान जाय, हरि बोल हरि बोल बलि सब धाय।
नदी में रहने वाले सब लोग ग्रहण होने के कारण, ग्रहण लगने के कारण नदी में स्नान करने जा रहे हैं और स्नान करते करते सबके मुख में हरि बोल। अनंत अरबुद लोग, अरब अरब लोग थे।
है न हरि ध्वनि है न सर्व न दियाय, ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान न पाय।
सब लोग के मुख में हरि बोल हरि बोल और यह हरि बोल की ध्वनि ब्रह्मांड को भेद दी, पूरे ब्रह्मांड में हरि बोल की ध्वनि छाने लगी।
अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सभे बोल निरंतर हउ ग्रहण।
अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सभे बोल निरंतर हइ ग्रहण।
सब लोग चाहे भक्त है चाहे भक्त नहीं है, भक्त अभक्त पापी तापी म्लेच्छ यवन, सब लोग भगवान का नाम लेने लगे, हरि बोल हरि बोल करने लगे। और उस समय जितने भी
भक्त थे वे सोचने लगे अचानक सब लोग को क्या हो गया। जो लोग भगवान के नाम को नहीं जानते थे वे लोग भगवान का नाम लेकर गाने लगे। भक्त लोग मन में सोचने लगे कि ऐसा ग्रहण तो रोज होना चाहिए, यदि रोज ग्रहण हुआ तो रोज भगवान का नाम लेंगे।
गंगा स्नान चली लेना सकल भक्त निरवधि चतुर्दी के हरि संकीर्तन।
गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करते करते भगवान का नाम ले रहे हैं।
कीवा शिशु रुद्र नारी सजन दुजना सबे हरि हरि बोले देखिया।
बालक हो बड़ा हो या वृद्ध हो सब लोग ग्रहण के भय से भगवान का नाम लेने लगे। सब लोग के मुंह से एक ही ध्वनि हरि बोल
हरि बोल हरि बोल सब सुनी सकल ब्रह्मांड व्यापी ने कह
पर इतने हरि बोल की ध्वनि देवताओं से नहीं रहा गया। देवता लोग अपने स्वर्ग को छोड़ छोड़ कर सभी देवतागण नवद्वीप में आ गए और नवद्वीप में आकर समस्त देवतागण फूल की वृष्टि करने लगे।
चतुर्दी के पुष्प वृष्टि करे देव जय शब्दु जय
देवताओं को पता चल गया भगवान अवतरित होने वाले हैं जन्म लेने वाले हैं। देवता लोग अप्सराए नाचने लगी गाने लगी गंधर्व शंख नगाड़े पखावज दुंदुभी तुरही बजाने लगे। सब लोग कोलाहल पूर्ण देवता भी हरि बोल कहने लगे मनुष्य भी हरि बोल कहने लगे। चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में केवल भगवान का नाम और उसी समय सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है जैसे पूर्ण कला से स्वरूप चंद्रमा प्रकट होता है जैसे शिवनी के गर्भ से शिव जन्म लेता है वैसे सच्ची के गर्भ से भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण हरे
Hare Krishna,
Krishna Krishna.
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे
कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे
कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
नितिन प्रभु
कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
सभी लोग
राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे